नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। नमस्कार उत्तरा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद प्रियंका।
आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और अमरीका के बीच मुकाबला जारी। भारत का मैच कल अफगानिस्तान से। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने 326 रन का लक्ष्य दिया। ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तुर्कू में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में स्वर्ण पदक जीता। और यूरो कप फुटबॉल में आज पुर्तगाल ने चेक गणराज्य को हराया। क्रोएशिया और अल्बेनिया के बीच मैच ड्रॉ हो गया है और कुछ ही देर में जर्मनी का सामना हंगरी से होगा। सबसे पहली बात T20 के विश्व कप से स्टार्ट करते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो गए हैं। पहला मुकाबला अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने छठे ओवर में एक विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। अमरीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। अगर देखा जाए उत्तरा जी, अमरीका की दाद देनी पड़ेगी कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और पाकिस्तान जैसी टीम को हराकर सुपर 8 में पहुंची।
बिल्कुल, और उसी मैच से एक तरह से पाकिस्तान कभी उभर ही नहीं पाया बाकी के टूर्नामेंट में। भले ही उन्होंने कोशिश जरूर की थी, पर भारत से वो हारे, उसके बाद उनके लिए बाकी मैच जीतने बहुत जरूरी हो गए थे। पर जो यूएसए से जिस तरह से वो हारे थे, उस हर कोई ये सोच के चल रहा था कि भारत पाकिस्तान तो सुपर 8 में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, पर उस मैच के बाद पाकिस्तान उस तरह से कभी टीम पूरी तरह से खुल के आ ही नहीं पाई, जबकि यूएसए की टीम क्योंकि घर पे भी खेल रही थी। हालांकि क्रिकेट यूएसए में जिस तरह से है उसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा होम सपोर्ट था, क्योंकि क्रिकेट बहुत बड़ा नहीं है यूएसए में, पर आप अपने घर पे खेल रहे हैं तो उस चीज को लेके वो आगे बढ़े हैं। और उसमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि वो टीम और वो खिलाड़ी इस लेवल पे कम से कम T20 फॉर्मेट में एटलीस्ट बिलोंग करते हैं, और अगर उनको वर्ल्ड कप दिया गया है तो एक मेजबान होने के नाते सुपर 8 में पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी बात
जी। और जैसे आज यहां मैच हो रहा है एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम का, जो वर्ल्ड कप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पहले गेंदबाजी करने वालों के फेवर में रहा है और जो चेस करने वाली टीम है वो जीती है, तो अमरीका ने शायद थोड़ा उसका फायदा उठाया है और उलट फेर हो सकता है क्योंकि अमरीका ने की कर दिखाया।
बिल्कुल, और लगातार ये कहा जा रहा था कि पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना ही सही रहेगा, वहां से जितनी भी पिच रिपोर्ट भी आई थी, तो उस हिसाब से अगर हम कहें कि पहला जो पहला राउंड है वो यूएसए के फेवर में चला गया है टॉस जीतने का, तो और ऊपर से अब वो विकेट भी ले चुके हैं, तो एक विकेट ऑलरेडी गिर चुका है साउथ अफ्रीका का शुरुआती दौर में ही, तो आसान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी टीम इस वक्त जितनी भी बड़ी टीमें हैं वो यूएसए को हल्के में लेंगी, क्योंकि वो ये प्रूव कर चुकी हैं जो मैच वो हारे भी हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी तरह से उनको किसी ने पूरी तरह से हराया हो या कुछ हो, लगातार वो जीत के आसपास आते हुए हारे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका हो या कोई भी टीम हो उनको हल्के में लेगी।
क्योंकि अगर आप दक्षिण अफ्रीका का भी अगर देखें, नो डाउट वो उनके जो प्लेयर अजय रही है अभी तक टूर्नामेंट में, लेकिन जो उसके बल्लेबाज रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए अभी तक इस टूर्नामेंट।
बिल्कुल, जिस तरह का आप उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका जिस तरह की टीम है, तो बट साउथ अफ्रीका का ये हमेशा से रहा है, वो बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा आप उनको देखेंगे कि वो किसी न किसी वजह से रह जाते हैं, तो इस बारी ऐसी कोई खास वजह नहीं दिख रही है, पर उस तरह का परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिला है अभी तक, ना गेंदबाजी में ना बल्लेबाजी में। यह अलग बात है कि वो जीतते जरूर जा रहे हैं, बट आसान उनके लिए नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो मुझे लगता है कि अगर यूएसए थोड़ा सा, क्योंकि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर वो थोड़ी सी सधी हुई बॉलिंग करें और इनको रोक दें, हालांकि यूएसए जितना नहीं कम रहेगा क्योंकि प्रॉपर क्रिकेटिंग पिचेस हैं, यूएस में उस तरह की पिचेस नहीं थी, न्यूयॉर्क में जो मैचेस हुए हैं ड्रॉप पिच थी, बिल्कुल पहली बार खेला जा रहा है उस पर, कंडीशन बिल्कुल नहीं थे, तो वहां पर रन नहीं बन रहे थे, यहां पर थोड़ा आसान होगा क्योंकि आप एक प्रॉपर क्रिकेटिंग ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पिच पे खेल रहे हैं, वहां पर कंडीशन वेस्ट इंडीज
की बहुत हैं जो मायने रखते हैं,
बहुत से लोगों को पता है उनके बारे में, न्यूयॉर्क के बारे में कई खिलाड़ियों को तो पता भी नहीं था कि किस तरह के कंडीशंस उन्हें मिलेंगे, तो बट अगर ये थोड़ा सा सद के खेलते हैं और 150 के आसपास भी उनको रोक लेते हैं तो मुझे लगता है यूएसए के चांसेस ब्राइट रहेंगे
जी। और भारत का जो अब कल पहला मैच है सुपर 8 में, वो है अफगानिस्तान से, और ये बताया आपको कि सुपर 8 के सभी मुकाबले वेस्टइंडीज में हो रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम को भी हम कमतर नहीं आंक सकते क्योंकि इस विश्व कप में न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को 84 रन से हराया था अफगानिस्तान ने। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच जितने T20 मैच हुए हैं उसमें बाजी हमेशा भारत ने ही जीती है।
बिल्कुल खिलाड़ियों का स्तर अगर वन ऑन वन देखें तो बिल्कुल भारत बहुत बेहतर टीम है अफगानिस्तान से, पर अफगानिस्तान ने जिस तरह से इम्प्रूव किया है उस वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, और खास करके लगातार जब शुरुआत हुई थी तो अफगानिस्तान अपने स्पिनर्स के लिए जाना जाता था, पर ओवर द ईयर्स धीरे धीरे उन्होंने बाकी हर चीज पे काम किया है बिना स्पिन को इग्नोर किए। ये अलग बात है कि इस बारी उनके पास मुजीब नहीं है जो इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं, पर राशिद खान की कप्तानी में उनके पास बॉलर्स हैं अच्छे स्पिनर्स, और अच्छी चीज ये है कि अब जब उनके पास खिलाड़ी आए हैं नए, चाहे उनके वो विकेट कीपर हों या उनके जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो अब बैटिंग पे भी उतना ध्यान दे रहे हैं जो पहले अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अफगानिस्तान एक एक करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो अपने हर गेम के हर एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, और अब एक तरह से हालांकि एक्सपीरियंस शायद उनका ना हो, नाम उस तरह से बड़े ना हो, पर जो आईपीएल में उनको खेल के बाकी खिलाड़ियों के साथ खेलने का एक तजुर्बा मिलता है, राशिद खान के पास बहुत एक्सपीरियंस है, भले ही वो अफगानिस्तान से खेलते हैं पर दुनिया के किसी भी बड़ी टीम के खिलाड़ी से कम नहीं है उनके पास एक्सपीरियंस, इतने सालों से वो खेल रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान को अब एक छोटी टीम कहना सही होगा, छोटी टीमों में जिनको अब और बढ़ावा देने की जरूरत है उसमें शायद नमीबिया या युगांडा या पापुआ न्यू गिनी टाइप की टीमें आएंगी,
क्योंकि इस बार मुझे याद आ रहा है इस बार जो मैच हुआ था कुछ समय पहले मतलब इसी साल, तो दोनों भारत और अफगानिस्तान के बीच 212-212 पर ड्रॉ रहा था और सुपर ओवर में जाकर इंडिया ने बाजी मारी थी। आपको बता दें ओलंपिक विजेता और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। पावो नूर्मी गेम्स में नीरज ने 85.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। चोट के बाद वापसी कर रहे नीरज ने 83.62 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर शुरुआत की, लेकिन दूसरे प्रयास में फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 83.96 मीटर के साथ बढ़त बना ली। तीसरे प्रयास में चोपड़ा ने 87.97 मीटर के साथ भाला फेंककर फिर बढ़त ले ली। देखा जाए तो नीरज ने पेरिस ओलंपिक से पहले स्वर्ण पदक जीतकर अपने फिटनेस का प्रमाण दे दिया।
बिल्कुल, और उनकी फिटनेस पे ही ध्यान ज्यादा था, यहां पे अगर गोल्ड नहीं भी आता तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे ही ध्यान दे रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने इससे पहले जो गोल्डन स्पाइक था वो उन्होंने उसमें से पुल आउट भी किया था मसल स्ट्रेन की वजह से, तो उनके फिटनेस पे ही सबसे ज्यादा कंसर्न था, और उन्होंने ये अच्छी बात है कि उन्होंने मार्क की कोशिश उस तरह से नहीं की कि 87, 88 या 90 के बारे में नहीं सोचा, बट अपना उन्होंने बेस्ट दिया बिना अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाले, तो ये एक अच्छी चीज है कि वो रिकवर कर रहे हैं, अपनी फिटनेस उन्होंने दोबारा प्रूव की, प्लस इसमें काफी ऐसे खिलाड़ी थे जो उनके साथ ओलंपिक्स में रहेंगे। बहुत एक्साइटिंग था ये देखना जो जर्मनी के 19 साल के मैक्स डेनिंग है, पर उस 90 मीटर के मार्क के बाद वो लगातार 70s और अर्ली 80s में ही उनका आ रहा है,
7वें स्थान पर रहे वो, मतलब हैरान करने वाली बात।
बिल्कुल, उन्होंने 80 भी शायद क्रॉस नहीं किया था, तो उनको देखना थोड़ा एक्साइटिंग था बट वो डिसअपॉइंटिंग रहा। बाकी जो बाकी के थ्रोअर्स थे, चाहे वो एंडरसन पीटर्स थे या केशॉन वॉलकॉट थे, वो भी उस तरह से नहीं प्रदर्शन कर पाए, तो ये एक अच्छी चीज थी कि 85 फाइव समथिंग में ही वो अपना मार्क वो अपना गोल्ड ले पाए, पर रिकवरी जो है वो बहुत अच्छी है और अभी आगे एक दो और उनके बचे हैं कॉम्पिटिशन्स यूरोप में ही, एक आध डायमंड लीग का और होगा कॉम्पिटिशन। तो जैसे जैसे पेरिस पास आता जा रहा है मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो अपनी फिटनेस और अपने थ्रोज दोनों को कंबाइन करके आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, और पिछली बार इस प्रतियोगिता में नीरज ने रजत पदक हासिल किया था और इस बार उन्होंने अपना सपना साकार कर लिया स्वर्ण पदक जीतकर, और जो ओलिवर थे उन्होंने पिछली बार स्वर्ण जीता था और इस बार वे तीसरे स्थान पर रहे। अब उत्तरा जिस मैच का हम इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट की किसी भी मोमेंट आ सकता है कि बेंगलुरु में महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में दूसरे एक दिवसीय मैच में 4 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 325 रन बनाए, मतलब इतना टफ लास्ट मोमेंट तक हम सोच रहे थे कुछ भी हो सकता है।
बिल्कुल, और ऐसे ही मैचेस आप देखना पसंद करते हैं, हालांकि T20 जब से आया है 50 ओवर्स पे थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट जरूर कम होता लग रहा है, पर जब महिला क्रिकेट की बात आती है तो उसमें आपको हमेशा देखने में अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपको स्किल्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम ये देखें कि स्मृति मंदना और हरमनप्रीत कौर दोनों ने सेंचुरीज मारी हैं, और अगर हम पिछला भी रिकॉर्ड देखें तो जब भी भारत की महिला टीम ने जब भी 300 का आंकड़ा पार किया है ओडीआई में, उसमें इन दोनों में से किसी एक ने या दोनों ने जरूर सेंचुरी मारी है। तो ये आपको बताता है कि एक्सपीरियंस कितनी बड़ी चीज है और बड़े मैच का प्लेयर होना कितनी बड़ी बात है।
बिल्कुल, कप्तान और उपकप्तान दोनों ने शतकीय पारी खेली। स्मृति ने सर्वाधिक 136 रन बनाए और जो कप्तान हरमनप्रीत कौर थी उन्होंने 103 रन की पारी खेली, और दक्षिण अफ्रीका की भी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उनकी कप्तान लॉरा ने 125 से ज्यादा रन बनाए हैं, और उसके अलावा जो कैप थी उनकी प्लेयर उन्होंने 114 रन की पारी खेली। पर अगर हम शेफाली वर्मा का सलामी बल्लेबाज उनका हम परफॉर्मेंस देखें, एक दिवसीय मैचों में लगातार खराब चल रहा है और उन्होंने आखिरी जो अर्धशतक था 2022 में लगाया था।
ये 22 का जो बेंचमार्क है उसको मैं उतना सीरियसली नहीं लूंगी क्योंकि जितना वुमेन्स क्रिकेट खेला जाता है उसमें 22 से अब तक मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले हैं उस तरह से, अगर हम वुमेन्स आईपीएल को छोड़ दिया जाए तो देखने में लगता है कि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का वक्त है, पर उस 1.5-2 साल में मुश्किल से शायद 8 या 10 मैच खेले होंगे इन्होंने, इनकी टीम ने। तो वो अगर हम टाइम पीरियड की बात ना करके मैचेस की बात करें तो बेहतर रहेगा, पर हाँ थोड़ा सा जरूर है। पर मुझे लगता है कि शेफाली के ऊपर प्रेशर भी है थोड़ा सा, किसी को उनको ये बताना चाहिए कि आपको हर मैच में जाके रन बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको हर मैच में पहले बॉल से चौका या छक्का मारने की जरूरत है। वो जानी इसी के लिए जाती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, वो उनका स्टाइल है खेलने का। पर जब आप 50 ओवर आपको खेलने हो तो आपको कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा रोक के भी खेलने की जरूरत होती है, और यहां पे तो उनको अपने लिए खेलना है टीम के लिए नहीं।
बिल्कुल, और आपको बता दें कि भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है। बात यूरो कप की, यूरो फुटबॉल कप में आज पुर्तगाल ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर जीत के साथ आगाज किया, और दूसरे मैच में क्रोएशिया और अल्बेनिया के बीच जो मुकाबला था वो 2-2 की बराबरी पर रहा, और अब से कुछ देर में तीसरा मैच जर्मनी और हंगरी के बीच खेला जाएगा। जो पुर्तगाल और चेक गणराज्य के बीच मैच वो बहुत ही रोमांचक कह सकते हैं क्योंकि एक समय जब ऐसा लग रहा था कि मैच बराबरी पर आ गया है, दोनों ने 1-1 गोल कर लिए, उस समय पुर्तगाल के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी फ्रांसिस्को आए और 2 मिनट बाद ही गोल कर टीम को जिता दिया।
बिल्कुल, और जो दूसरा मैच था उसमें भी इसी तरह से हुआ है, तो बहुत ही एक्साइटिंग जा रहा है। यूरो में भी कुछ टीमें हैं, फुटबॉल में जब कहा जाता है कि बड़ी टीमें हैं जिनको बड़ी टीमें कहा जाता है, पर यूरोपियन फुटबॉल इतना कॉम्पिटेटिव है और इतना ज्यादा वहां पे हर खिलाड़ी बाकी लीग्स में खेलता है कि आप हर बाकी सभी खिलाड़ियों के बारे में आपको इतना पता है कि वो कभी भी कोई भी एक तरफा मैच नहीं होता। बल्कि जो पहला मैच था जो जर्मनी 5-1 से जीती थी स्कॉटलैंड में, वो बहुत ही रेयर है आज की तारीख में टॉप लेवल फुटबॉल में। तो जिस तरह से अभी मैचेस हो रहे हैं, यूरो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनिश की तरफ बढ़ता दिख रहा है हमें।
जी, और आपको जाते जाते बता दें कि पूर्व ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका, कैरोलिन वोजियान्स्की, एंजेलिक कर्बर और एमा राडुकानो को विमल्डन के लिए वाइल्ड कार्ड दिए गए हैं। समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। उत्तरा जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।